आगे देखेंगे आयत नंबर 9। अलम यातिकुम नबउ लज़ीन मिन क़ब्लिकुम क़ौमि नूहिन व आदिन व समूद, क्या तुम्हारे पास नहीं आ चुकी हैं खबरें इन लोगों की जो तुमसे पहले थे, यानी कौम नूह, आद और समूद की, बल्कि वल्लज़ीन मिन बादिहिम, और उनकी भी जो इनके बाद हुए। बस इतनी बात करके कहा, ला यालमुहुम इल्लल्लाह, कोई नहीं जानता इनको अल्लाह के सिवा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हालात बड़े तंग थे जिन दिनों में ये सूरतें नाजिल हो रही हैं। आप शायद उस दर्द को महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन जब से सूरत यूसुफ और उसके अगली सूरतें शुरू हुई हैं, एक अजीब सी दिल में तकलीफ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ती जाती है। हालात मक्का के बहुत तंग थे और लोग ऐसे कसम खाए हुए थे कि इस दावत को कबूल नहीं करना, ना करो लेकिन फिर इसके रास्ते में रोड़े अटकाते हुए। तो ऐसे वक्तों में फिर इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि तसल्लियाँ मिले। आज मैं और आप किसी भी गम में हो तो कौन तसल्ली देता है? माँ जिंदा होगी तो वो देगी, शौहर, बाप, बच्चे, दोस्त, साथी। सोचिए कि जब भी कोई हमें हमारे किसी दुखी वक्त में, किसी दुख के वक्त में कोई तसल्ली देता है, तसल्ली देने वाले के अपने हाथ में क्या है? जन बातें करने के अलावा और हमें क्या दे सकता है? नहीं दे सकता ना। लेकिन जो लोग अल्लाह के रास्ते में सताए जाते हैं ना, उनको तसल्लियाँ भी अल्लाह की तरफ से आती हैं। कभी आपके बच्चे को चोट लगी? जब चोट लगे तो करना पता क्या चाहिए? बच्चे को बहलाएं, उसको कोई कहानी सुनाएं, उसको ऐसी बातों में डाल दें कि उसको अपनी दर्द का एहसास भूल जाए। यहाँ भी असल में हम यही पढ़ रहे हैं कि अल्लाह के नबी का दिल दुखा हुआ था। लोग अपने वक्त और माशरे के रस्म और रिवाज से इधर उधर होने को ज़रा बराबर तैयार नहीं थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐ नबी, आपको खबरें नहीं पहुँची? यानी बिल्कुल अल्लाह के नबी के साथ साथ जमा के सीगे में सहाबा को भी कहा जा रहा है, हमें पता है जो लोग आपको सताते हैं, हमें पता है कि लोगों को जो आपकी ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो याद रखिए कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, आपसे पहले के लोगों के साथ भी यही हुआ। और कौन कौन पहली कौमें आई? ला यालमुहुम इल्लल्लाह, ये जुमला क्या बताता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक पहले कितनी कौमें गुजरी हैं, इसकी सही तादाद, इनके नाम अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पता। इसको तो छोड़िए, आइए देखिए कि किया क्या कौमों ने लोगों के साथ। आप सब इन बातों को सुनते वो क्या सोचे? आज के दौर में अगर कोई नबी आ जाता, हमारे नबी आखिरी नबी, हम सब का इस पर ईमान है, कोई अगर ये कहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी या रसूल आया, तो उसका तो इस्लाम ही ख़त्म हो गया, उसने तो दीन की आधी बुनियाद ख़त्म कर दी। लिहाजा होगा तो नहीं, लेकिन तसव्वुर के लिए सोच लीजिए कि अगर आज के दौर में कोई नबी आ जाए, आपका क्या ख्याल है लोग भला क्या करेंगे उनके साथ? शायद आप सोचेंगे लोग तो जौक दर जौक आएंगे, लोग उनको देखेंगे फिर रोएंगे, फिर लोग पकड़ेंगे उनको, फिर उनको देख के कहेंगे अब हमें अपना साथ ना छोड़िएगा, हमारा साथ ना छोड़े। वल्लाही बड़े शौर से कहूँगी कि आज अगर बाकी नबियों को तो छोड़ दें, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आ जाए, जो हमारे दिलों में बसते हैं, जिनसे मोहब्बत हमारे ईमान का तकाजा है, जिनकी मोहब्बत से अल्लाह की मोहब्बत मिलती है, तो लोग वही करेंगे जो आज लोग अल्लाह के दीन के साथ कर रहे हैं, जो आज अल्लाह के नबी की हदीस के साथ कर रहे हैं, जो आज लोग अल्लाह के नबी की सुन्नत के साथ कर रहे हैं, जो लोग आज अल्लाह की तरफ बुलाने वालों के साथ कर रहे हैं। तो चेहरों से कुछ नहीं होता, असल यह कि जब दिल में मोहब्बत दुनिया की होती है तो दीन वाला हर रंग से बुरा लगता है। अब जरा वो एक्शंस देखिए, यानी बिल्कुल जब जुमला बोलने वाली हो, देखिएगा कुरान ने उनके बॉडी एक्शंस पे जिक्र किया है कि हुआ क्या, जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात, उनके पास उनके रसूल आए थे वाज़े निशानियां लेकर। यानी हर रसूल कोई ना कोई बय्यिना लेकर आया, दलील थी, बगैर दलील के रसूलों ने बात नहीं की। और यही बात आज भी है कि दीन की बात करते वक्त भी दलील होनी चाहिए। रसूल हमेशा हक की दलील लेकर आते हैं, रसूल दुनिया से बेरगबती की दलील लेकर आते हैं। लेकिन कौमों ने रसूलों के साथ क्या मामला किया? तो उन्होंने अपनी उंगलियां अपने मुंहों में ठोंस ली। इमेजिन कीजिए, फरुद्दू, اور ساتھ ہی منہ پہ جو جملہ آیا وہ کیا تھا؟ وقالو اِنَّا كَفَرْنَا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ، ہم اس کا انکار کرتے ہیں جو تم لے کر آئے ہو، رکھو اپنا دین اپنے پاس، یہ ٹون ہے، ہمیں نہیں ضرورت تمہارے دین کی، تھینک یو، وی آر ویری مچ کمفرٹیبل ود آور لائف اسٹائل، یہ مشکل لگا. اور دوسری بات، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيب، اور تم ہمیں جس چیز کی دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں ہم سخت الجھن میں ڈال دینے والے، شک میں مبتلا ہیں. یہ ملا تھا نبیوں کو اپنے اپنے دور میں دین کی دعوت کا رسپانس. اس کے برعکس آپ ذرا سوچئے، کنسرٹ ہو، کوئی کسی شہر میں کوئی گلوکار کوئی اداکار آ جائے، تو خبریں تو آپ بھی سنتے ہی ہیں نا، ہم تو پورا ویکینڈ ناگواری کی حالت میں سنتے رہے. آپ کو پتا اسٹیڈیم میں اس پورے ویکینڈ پہ کنسرٹ تھا، اور کین یو بلیو، ہمارے گھر چونکہ قریب ہے، ایسے لگ رہا تھا کہ ہمارے گھر کے پیچھے صحن میں کوئی دھم دھم ہو رہی ہے. کوئی قانون نہیں اس میں، کوئی نیبرز رائٹ نہیں، کوئی بچے بوڑھوں کا کسی کی نیند کا خیال نہیں، کیونکہ سب کو اچھا لگتا ہے. اس کے برعکس نبیوں کی دعوت، چونکہ لوگوں کو یہ دنیا کی رونق میلوں سے دور کرنے والی دعوت ہوتی ہے، تو لوگ اس کے جواب میں یہ رسپانس دیتے ہیں. تمام رسولوں کو ایک جماعت بنا کر اکٹھے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ سب رسولوں کی دعوت ایک ہی تھی، اور دعوت کے جواب میں قوموں کا رسپانس اور ان کا رد عمل ایک جیسا تھا. سب نے اپنے رسولوں کی دعوت کو رد کیا. پہلے تو کہنے لگے کہ ہم سنیں گے نہیں، تھوڑا سا بات کرتے ہیں، فردو ایدیہم فی افواہہم، اس سے کیا مراد ہے؟ بڑا ایک جملہ ایسے لگتا ہے کہ تھوڑا سا سمجھنے والا جملہ ہے، ٹھیک ہے. آپ دیکھیے کہ اس کا ایک مفہوم تو کیا ہے کہ انہوں نے اپنے انگلیوں سے یوں کیا. اب اس آپ کو نا ایکشن سے سمجھ آئے گی، ردو نہ سناؤ، ہم نہیں سنیں گے، یہ ہے فردو ایدیہم کی ایک تفسیر، کہ لوگوں نے جب نبیوں کی زبان سے اتنی خوبصورت بات سنی تو کہا کہ نو نو نو. دوسری تفسیر کہ جب نبیوں کی بات ہوئی تو انہوں نے یوں کیا، یہ دیکھیں، خاموش، چپ چپ کروایا نبیوں کو، بولو نہیں، بات نہ کرو. پھر اسی طرح، اب مجھے کرنا بھی نہیں اچھا لگ رہا لیکن کر کے دکھانا پڑ رہا ہے، تیسری تفسیر اس کی آتی ہے کہ جب نبیوں نے دین کی دعوت دی تو انہوں نے اپنے منہ پر حیرت اور مذاق اڑانے کے انداز پر انگلیاں رکھ لیں، جیسے لائک دس، جیسے آپ دیکھیے کوئی کسی اپنی ہنسی کا چھپاتے ہیں نا، تو ہنستے ہنستے کوئی منہ پہ ہاتھ رکھتا ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے مذاق اڑاتا ہے کہ جیسے اتنا فن، اتنی مزے کی، آپ نے اتنی امپاسبل بات کہہ دی ہے کہ اس دنیا میں سب کو چھوڑ کر ایک کے بن جاؤ اور آخرت آئے گی، مرنے کے بجیں گے، یعنی انہوں نے اپنی ہنسی ضبط کرنے کے لیے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے. اسی طرح چوتھی تفسیر، اپنے نہیں نبیوں کے جا کے منہ پر ہاتھ رکھ دیے کہ خبردار اگر تم بولے تو. اور بعض کہتے ہیں جیسے تیوریاں چڑھا کے کہتے ہیں نا، غصے کے ساتھ ہاتھ، غضب کے ساتھ، اس طرح سے اپنے چہرے سے ناگواری کے تاثرات دیتے ہوئے کہا خاموش ہو جاؤ. بالکل یہ وہی بات ہے جو سورۃ آل عمران کی آیت 119 میں منافقین کے بارے میں کہی گئی، کہ ادو علیکم الانامل من الغیظ، کہ یہ آپ کے اوپر غصے سے اپنی انگلیاں چٹکتے ہیں، ایسے جیسے وہ لوگ انگلیاں نہیں چٹکتے، یہ کبھی آپ نے پٹاخے پھوڑنا، وہاں منافقوں کی بات تھی، کہ ان کو غصہ آتا ہے اسلام کی ترقی دیکھ کر، ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا رنگ میں بھنگ ڈالنے آ گئے ہیں. اب ان میں سے کوئی بھی مانی لے لیجئے، لیکن آپ دیکھیے کہ سب کے اندر ایک بات ہے، وی ول ناٹ لسن یو، ہمیں نہیں سننا تمہاری بات، آرام سے بیٹھو، توجہ نہ کرو. بعض کہتے ہیں انہوں نے لوگوں کو کہا خبردار ان کی بات نہ سننا، ڈونٹ لسن ٹو دیم. اور مریب دوسری بات کیا کی، کہ ہمیں تو تمہاری باتوں پہ شک کی بہت ہے. مریب ریب سے ہے، یہ وہی لفظ ہے جو سورہ بقرہ کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فی. تو ریب کون سا شک؟ جو سخت قلق اور اضطراب میں مبتلا کر دے. ایک ہوتا ہے شک، ایسے ہی پڑھ جاتا ہے کوئی شک بندے کو، لیکن ایک ایسا شک ہوتا ہے کہ جس کے بعد انسان کے دل میں کئی قسم کے مختلف خیالات ابھرتے ہیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے منہ پر ہاتھ مارے تعجب کے طور پر، نبیوں کو چپ کرانے کے طور پر، حیرت کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے، اپنی ہنسی روکتے ہوئے، غضب اور غصے کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. کیا آج بھی لوگ حق کی بات پر یہ کرتے ہیں؟ کیا آج بھی لوگوں کے دل میں یہی آتا ہے؟ لیکن آپ دیکھیے کہ نبیوں کی محبت اپنی قوموں کے ساتھ، उन्होंने इन सारी बातों के बावजूद काम करना नहीं छोड़ा। उनका हाल क्या था कि तुम नहीं सुनते, हम सुनाएंगे। इंशाल्लाह हम सूरत नूह में हजरत नूह के वो सारे जुमले खुद पढ़ेंगे कि इन्नी दाऊ तो हम लैलम व नहारन, अल्लाह मैंने इनको सुबह को भी पुकारा, रात को भी पुकारा, कभी इन्नी दाऊ तो हम जिहारा पुकार के, कभी खामोशी से। तो गोया के नबी छू के किसी नफ्सियाती उलझन का शिकार नहीं होते, लिहाजा वो इस बैड रिस्पॉन्स को देखकर काम करना नहीं छोड़ते। यहाँ समझ लीजिए जो बात अब आगे भी आने वाली है। आप देखिए कि जाहिर हम नेकी का ही काम कर रहे होते हैं, जैसे इस वक्त मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हैं, हमारे लिए इस वक्त ये नेकी है। इस काम को करने के दो मुख्तलिफ अंदाज होते हैं। एक अंदाज क्या होता है कि बस हम कर रहे हैं, चूंकि दोस्तें कर रही थी हमने भी ये कोर्स शुरू कर दिया, चूंकि किसी ने बुलाया हम आ गए, हम चंद दिन में ये बात करने लग गए। अब ऐसा बंदा जिसका अपना दिल तो अभी उस तरह नहीं जमा हुआ, लेकिन बस उसको इसमें मजा ही बहुत आता है, जब वो आता है उसको कोई अच्छी बात ही मिलती है। एक दूसरा बंदा है जो कहता है कि नहीं, असल यही रास्ता है। अब दोनों का फर्क क्या है? पहली सूरत वाला बंदा चंद दिन आएगा, जब इजी है तब आएगा, जब सहूलत आएगा उसकी तारीफ करो तो और भी आएगा, और उस पर तनकीद करो तो अगले दिन से आना छोड़ देगा। याद रखिए कि तारीफ और तनकीद दो एसिड टेस्ट है। एसिड टेस्ट पता क्या होता है? एसिड्स में डाल के चीजों को देखा जाता है, ये सोना खरा है किसका वर्कआउट है। जो बंदा दीन का कोई काम करे और लोग उसकी तारीफ करें तो वो खूब काम करे, और लोग उस पर तनकीद करें या उसकी बात को अप्रिशिएट ना करें या उसके करेक्टर पे या उसकी बात पे थोड़ा सा उससे कुछ बोझ पड़े, छोड़ दे, तो समझ लीजिए कि वो अल्लाह के लिए नहीं कर रहा था। आज जाके हम सब अपने ईमान और इस्लाम और अमल सालेह को जाके रिवाइज कर लें, क्या हकीकत में अल्लाह के लिए मुस्लिम हुई हूँ, क्या हकीकत में अल्लाह के लिए कुरान पढ़ती हूँ, या फिर बस देखा देखी, चलो एक फैशन, एक रिवाज है, एक काम है करने का करते हैं। दूसरी किस्म के जो लोग होते हैं ना, वो कहते हैं तुम हमें अच्छा को, तुम हमें बुरा को, तुम हमें आग में डाल दो, तुम हमारे ऊपर कीचड़ फेंको, तुम हमारे ऊपर गंदगी फेंको, हम ये काम करते ही रहेंगे। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत दूसरे सारे लोग ऐसे थे। एक बड़ी खूबसूरत पोएम मेरे पास किसी ने भेजी है, आपको बीच में रिलैक्स करने के लिए सुनाऊंगी कि नबी कैसे इस दावत पे जम जाते थे कि वो लोग जो उनको बुरा भला कहते थे, आप उनकी बातें सुनकर बुरे नहीं बनते थे, बल्कि आप और अच्छे बनना चाहते थे। लेकिन आप कौमों के इतने बैड रवैये के बाद एक सवाल सिर्फ खुद से करें, फिर अगली आयत पे जाऊंगी। आप अपने ऊपर ले, क्योंकि आप कुरान सीख रहे हैं ना, तो सिखाते हैं तो एक वक्त सीख रहे हैं, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा अमल करते करते सिखाने की स्टेज पे भी पहुंच जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही जो हम कॉल ऑफ फेल से हर वक्त ही लोगों को सिखाते हैं, यानी बाज़ाब्ता तौर पे अल्लाह ताला आपको एक दो साल में इस काबिल कर देता है कि आप जाके दूसरों को दर्स देते हैं। आप बड़े तपाक से कहीं गई दर्स देने, शुरू शुरू में जोश भी बहुत होता है, डर भी बहुत लगता है, एक्साइटमेंट भी बहुत होती है। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है जब पहली दफ़ा मैंने जमात से नमाज पढ़ाई एक जगह, बहुत पहले की बात है, तो मुझे यकीन ही ना आया कि आज मैंने इतनी बड़ी नेकी की है कि अपने साथ इतनों की नमाज का मुझे अजर मिल गया। नई नई नेकियों का शौक बड़ा होता है। हाँ ये अलग बात है, जब नेकियां करने लग जाते हैं तो फिर ऐसे लगता है अब छोड़ो इनको क्या करना है। खैर किस्सा मुख्तसर, आप बड़े तपाक और अपने जोश से गई, स्टेज बनाकर सजाकर पूरी तैयारी से घर से निकली कि मैंने जाके वहां दर्श देना है, और अगर आपको देखकर लोगों का ये रवैया हो, चुप करो बैठ जाओ, हमें नहीं सुनाओ, हम नहीं सुनते तुम्हारी बात, और मुंह पे हाथ रख ले, उंगलियां रख ले, और आपको देख के इशारे करें, देखो देखो इसको कैसी लग रही है, आप क्या करेंगे? अपने से पूछिए, मुझे नहीं बताना आपने। यहाँ तो हम सब कह देंगे हम करते ही रहेंगे, नहीं करेंगे। नबियों ने क्या किया इस रिस्पॉन्स पे, इसको आयत नंबर 10 में देखिएगा। कालत रुसुलहुम, कहा उनके रसूलों ने, देखिए रसूल तो उनके ही थे ना, अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए भेजा। दीन की तरफ बुलाने वाले का अपना क्या फायदा है, सोचने की बात है, उसको क्या मिलता है, कभी सोचा आपने? देखिए ना कि कोई किसी तरफ बुलाए, किसी की जॉब होती है, लोग टेलीफोन पे काम करते हैं, जॉब करते हैं, ये प्रोडक्ट खरीदो इतना फायदा, भला क्यों करते हैं वो, आपको कमीशन मिलता है उनको। लोग दलाली करते हैं, बीच में एजेंट बन जाते हैं, आपको इधर से जमीन उधर लेके देते हैं, उनको फायदा होता है। कभी इंसान बैठ के सोचे दीन की तरफ बुलाने वाले को क्या मिलना है, राइट? तो रसूलों ने देखिए सोल सर्चिंग क्वेश्चन किया, अभिल्ला ही शक्कुन, क्या तुम अल्लाह पर शक करते हो? देखिए उन्होंने उस तनकीद करो अपनी जात से उठाकर अल्लाह की तरफ डाल दिया। कभी भी दीन के मामले में किसी बात को पर्सनल ना ले। उसने मुझे ये कह दिया, उसने मेरे साथ ये रवैया अख्तियार किया, आप हमेशा उसको कहें कि उसने अल्लाह के दीन के साथ ये मामला किया। मुझे किसी की बात याद आ गई, किसी ने अपना वाक्य सुनाया था। हमारी एक उस्ताद थी, तो वो कहती है कि मैं कहीं दर्स देने गई, हर दर्स हुआ सब कुछ कर कर आ रहे थे, जो भी था पता नहीं मौजू क्या होगा, किसी को इतनी जरूरत मिली। तो कहती हैं कि जब दर्स ख़त्म हुआ ना, तो उसके बाद एक सिस्टर मेरे पास आई और बड़ी रौनक से कहने लगी कि आप मुनाफिक हैं। कैन यू बिलीव, आप मुनाफिक हैं, हमें सब पता है आप ये क्या कर रही हैं, कुछ इस तरह के जुमले बोले होंगे। अब आप सोच सकते हैं कि एक बंदा जो इतनी दर्दमंदी से दीन का काम करे, जब उसको ये जुमला सुनना पड़े। कहती एकदम तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी, फिर मैंने उसको पिया निकला तो मैंने कहा कि जो बात आपने कही है वो अल्लाह ने सुन ली है। कहती है बिलीव मी कि मेरा ये जुमला सुनकर उसका एक रंग आया और एक रंग गया। और मैं आपको ये बता रही हूँ तो मुझे अल्लाह के नबी को बद्दुआ देने वाले या आप पे कीचड़ डालने वालों का वो एक्शन याद आ रहा है कि जब उन्होंने अल्लाह के नबी की जुबान से सुना कि तुझे मौत नहीं आएगी जब तक अल्लाह अपने कुत्तों में से कुत्ता तुझ पे मुसल्लत नहीं करेगा। एक शख्स ऐसा था, उसने अल्लाह के नबी के मुंह पे थूका था। कई वाक्यात हैं, एक से ज्यादा, जो अल्लाह के नबी कह देते थे वो होता था। और जब वो शख्स जंगल में पहुंचा, सबके बीच में था, रात को चारों तरफ लोग उसके इर्द गिर्द घेरा डाल के सो रहे थे, लेकिन उसको गम था कि मोहम्मद ने मुझे बद्दुआ दी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह तुझ पे कोई दरिंदा मुसल्लत करेगा, मेरी हिफाजत करो। और जब चारों के घेराव के बीच में रात को एक शेर आया, पूरे क्राउड को छोड़कर अंदर जाके उसको चीरने लगा, तो उसने बोला ए मोहम्मद, उन्हें मदीना में होने के बावजूद मुझे इस जंगल में आके मरवा दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना यकीन था दुश्मनों को भी कि जुबान से सच के सिवा कुछ नहीं निकलता। तो याद रखिए ऐसे वक्त में एक सब्र का घूंट अगर बर्दाश्त कर जाए ना इंसान, बर्दाश्त नहीं करते, हमारी जुबानें फिर खुलती हैं, फिर हम मुजरिम बन जाते हैं, मुलजिम बन जाते हैं। लिहाजा नबियों की अब बात सुनिए, अफिल्लाही शक्कुन, क्या तुम अल्लाह की जात के बारे में शक करते हो, फातिर समावाती वल अर्द, जो आसमान और जमीन को पैदा करने वाला है। मैं कहती हूँ आधा जुमला बोल के छोड़ दें, आप खुद सोचें फायदा हुआ कि नुकसान, बस इतनी बात करके छोड़ दें। ये सोल सर्चिंग स्टाइल लोगों का जमीर जुगाता है। याद रखिए कि जब आप इतना बोल लेते हैं, इतना बोल लेते हैं, आप तो दीन की हमीयत में बोलते हैं, अगला आपको उस वक्त मुल्ज़िम कहेगा। क्यों? क्योंकि आप तो वाकई जज्बे से बोल रहे हैं, लेकिन आपकी आंखें बोल रही हैं, आपका अंदाज अच्छा नहीं है, और आप यकीनन ज्यादती कर रहे हैं अगले के ऊपर। पहले आप मजलूम थे तो अब आप जालिम बन रहे हैं। तो नबियों ने आधी बात करके छोड़ दिया कि जिस रब ने तुम्हें दिया। देखिए यहाँ फातिर समावाती वाला अर्थ की बात क्यों है कि सोचो, जिस रब ने तुम्हें इतना कुछ दिया, आसमान और जमीन पैदा किए, तो क्या तुम उसके कासिद, उसके एम्बेसडर या उसके रसूल के साथ ये सलूक करोगे? मैं खुद तो नहीं आया, मुझे तो अल्लाह ने भेजा। तो लिहाजा यहाँ ये बात बता दी कि जब भी कोई दीन के नाम पे आपके मुंह लगे तो आप उसको सीधा अल्लाह पे डाल दें। अल्लाह को पता है, मेरी हकीकत अल्लाह को पता है। अच्छा, मुझे लगता है कि आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि आपका दिल खुल जाए, आपकी गलत फहमी दूर। बस ये दो चार नफे तुले जुमले बोले और काम से काम पे करें। काम छोड़ के बेकार चीज में जब लगेंगे तो फिर आपको पता है कि उसका नुकसान कितना बड़ा होगा। तो लिहाजा पहले अल्लाह की तरफ बात की, फिर कहा यह दू कुमलीकुम, वो अल्लाह तुम्हें बुला रहा है ताकि तुम्हारे गुनाहों को बख्श दे। तुमसे अल्लाह लेता क्या है? नबियों की बात का दर्द महसूस कीजिए कि दोगो तुम्हें अल्लाह क्यों बुला रहा है कि तुम पिछली जिंदगी में किए हुए गुनाहों को माफ करा लो। और क्या, वहां आग में जलोगे? आज इधर नदामत की आग में जल के अपने गुनाहों को माफ करा लो, वहां जहन्नुम में डाल डाल के तुम्हें तीनतुल खबाल पिलाया जाएगा, वहां तुम्हारे साथ गर्म पानियों के साथ मामला किया जाएगा। आज अपने आंसुओं की नमी से अपने गुनाहों को बुझा ले। देखिए, हम सब इसको दुनिया में बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि गुनाहों को माफ कराना कैसे होता है। मैं इसको एक मिसाल से आपके सामने रखती हूँ। अल्लाह ताला हम सबको महफूज कर रखे हर फितने से, हर आजमाइश से, लेकिन फिर भी तकलीफें तो आती हैं। कभी आपको कोई दाना निकला हो, जख्म होता है ना, बल्कि एक गढ़ निकल आता है बास दफा गर्मी की वजह से लोगों को, जिस पे मुंह नहीं होता। पहले अंदर पस पकती जाती है, पकती जाती है, फिर वो एक ट्यूमर सी बन जाती है, फिर ऊपर उसका हल्का सा मुंह सुर्ख होता है, जिसके बारे में हमने बचपन से ये बात सुनी है कि उसको चीरा लगवाना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर कटता है, फिर वो सब पस निकाल के तो बैंडेज लगता है। ये चीज समझ आती है ना? अब आप सोचिए, और ऐसे के लिए डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि जब डॉक्टर के पास पहुंच गए फिर तो चीरा बड़ा सख्त लगता है, फिर तो चीख निकलती है और उसमें बेहोश नहीं करते, और अब तो पता नहीं मुझे क्या तरीका होगा। उसके लिए वो क्या कहते हैं कि जब आपको महसूस हो ना कि आपके ऐसी कैफियत है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता हाथ को तेल या पानी कुछ लगा के तो उसको ऐसे सहलाएं, ऐसे किनारों से दबाएं। जितना आप उसको दबाएंगे ना, तो वो जो उसका मुंह सुर्ख है ना, उधर एक थोड़ा सा सुराख बनना शुरू हो जाएगा। जब आप ऐसा थोड़ा एक दो बार करेंगे ना, तो फिर आप देखेंगे कि एक दिन रात को खुद ही वो आपका जो जगह है जख्म की वो लीक करेगी, और आपका वो सब मवाद निकल जाएगा जो उसकी वजह से इठान थी और जो भी उसकी वजह से स्ट्रेचनेस थी, खत्म हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए, आप सुनते हुए भी महसूस कर सकते हैं, दोनों में से कौन सा तरीका इलाज बेहतर है? खुद अपने जख्मों की पस को आहिस्ता आहिस्ता निकाल लेना, या डॉक्टर से जाके कट लगवाना? सबको पता है कि पहला तरीका ठीक है, ये मुनासिब है। कभी कुछ हो जाए तो हम कहते तुम नहीं हाथ लगाओ, मैं खुद करूंगी, ऐसे होता है ना। अब आप इसको लीजिए गुनाह पे, हर गुनाह एक फोड़ा है, अंदर गुबार आता रहता है, अंदर आता रहता है, अंदर आता रहता है। जो लोग दुनिया में अपनी पिछली जिंदगी के गुनाहों को शर्मिंदगी से, नदामत से, खुद पे बोझ डाल के, नफ्स के खिलाफ चल के, अल्लाह के हुक्म से जब अपनी जिंदगी बदलते जाते हैं और अल्लाह के प्यारे बनते जाते हैं, ये बेहतर है, या फिर इसके बरक्स क्या होगा? हम नहीं करते ये, देखेंगे मौज करेंगे मस्ती, ये दुनिया की सिर्फ मस्ती है हमारे पास। और आप कितना सुन चुके हैं पिछली सूरत में, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, उसको ज़हन में ले आइए। आप खा लें, नाच लें, गा लें, पी लें, कपड़े पहन लें, शादियां खा लें, नहीं खुशी मिलेगी अगर आपका दिल खुश नहीं है। खुशी मिलती है अल्लाह की याद से, हमारे दिल को अल्लाह की मोहब्बत चाहिए, नबी का तरीका चाहिए। अब जब हम अपने गुनाहों को खुद नहीं फोड़ते ना, तो फिर होता क्या, पहले दर्जे पे अल्लाह ताला तो हमारे बहुत सारे गुनाहों को खुद ही माफ कर रहा है, ये उसकी सुन्नत है। जैसे सर से बाल उतरते रहते हैं या जिस्म से खाल उतरती रहती है, इसी तरह दिन रात हम जो इतने गुनाह करते हैं, अल्लाह के हुक्म से उसकी रहमत है कि दरख्तों के पत्तों की तरह हमारे गुनाह झड़ते रहते हैं। हदीस में आता है कि अगर अल्लाह लोगों के गुनाहों को माफ ना करे तो जमीन पे एक चलने फिरने वाली मखलूक ना बचे। ये हालात है, ये पहला दर्जा होता है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सारे गुनाहों की माफी के रास्ते हैं। दूसरी सूरत क्या होती है कि हम जो नेकियां करते हैं ना, कोई भी नेकी, वो हमारे बहुत सारे गुनाहों का कफारा बन जाती है, और अल्लाह ताला कुछ गुनाहों को उसके अंदर से डिलीट करता जाता है। ये सेकंड स्टेप है, कुछ गुनाह इसमें चले गए, इसके बाद क्या होता है, ये जो तकलीफें आती है ना, फिर उसमें अल्लाह हमारा रवैया देख रहा होता है कि तुम इस पे करते क्या हो। इसके बाद तीसरे दर्जे पे अल्लाह ताला हमें किसी मुश्किल में डालता है, ऐसी बड़ी मुश्किल, दो चार साल के लिए बिस्तर पर डाल दिया। जिंदगी में मुश्किलें हदीस में आते आती रहती हैं, आती रहती हैं, आती रहती हैं, हत्ता के इंसान डेथ बेड पे पहुंच जाता है। फरमाया कि मौत के बिस्तर पे मोमिन को आजमाया जाता है, और वो आजमाइश कैसी होती है कि जिसके बाद उसके ऊपर कोई तकलीफ नहीं रहेगी, और वो कौन सी होती है, नजा की सख्ती। बस अब आप देखते हैं कि कुछ लोगों की जिंदगी का कोई मकसद नहीं दिखता हमें, 5 साल से बेड रिडन है, 4 साल से स्ट्रोक ने, दूसरे उनकी जरूरियात पूरी करें। इसी तरह अल्लाह बाज़ दफ़ा लंबी उम्र डाल के अर्जल उम्र में तकलीफों में डाल देता है, और बाज़ दफ़ा हम बेचैन हो जाते हैं कि अच्छा जी अल्लाह ताला इन पर रहम करते, दूसरे रजों में यही होता है कि जल्दी ख़त्म हो। नहीं, अल्लाह ने वो गुनाह जो माफ़ करने, या वो दिन वो आपके सामने दे रहा बिस्तर पर डाल के, कहीं बहन देख लेगी, कहीं बेटी देख लेगी, कहीं बहू देख लेगी। लेकिन अगर यहाँ भी गुनाह माफ ना हो, फिर मौत की सख्तियाँ, वन्ना ज़ियाती गरका, वन्ना शिताती नश्ता, फिर उसमें जाता है, और उसके बाद फिर क्या होगा आपको पता, मौत भी आ गई फिर भी पूरी भी तो कब्र में कुछ गुनाह भी होंगे, फिर आएगा सबक कब्र के अज़ाब की दलील, वहां भी नहीं तो फिर मैदान हशर में मुश्किलात में डालकर, और वहां भी नहीं तो आखिरी जो इंसान का क्लियरेंस होना है ना, वो पुलसरात पे होना है। हदीस में आता है कि पुल सरात पाने क्लू, जैसे ये हुक्स नहीं होते इस तरह आप करें कुंडियाँ, इस तरह पुल सरात पे हुक्स लगे हुए हैं और वो स्लिपरी है। आप लोग क्यामत के बयान में पढ़ सकते हैं, और जब लोग वहाँ जाएंगे ना तो फिसलना शुरू हो जाएंगे। जिनके अंदर अभी भी कुछ गुनाहों का मैल था, फिर अल्लाह उनको वहां से काटेगा, गंदा खून वहां चलेगा, हर का खून वहां साफ होगा। हदीस में आता है कि हम मिराज की रात आपने देखा तो कुछ औरतों को उनके पिस्तान यानी उनकी ब्रेस्ट के साथ उन हुक्स लटकाया हुआ है, जो अपनी इज्जत और इज्जत की हिफाजत नहीं करती थी, उनको पता ही नहीं था हम चलते फिरते लगते कैसे हैं। और फिर कुछ को वहां से जहन्नुम में काट के गिराएगा, फिर वो कटेगा जिस्म, फिर पकेगा आग में, वो गंदगी दूर होगी जब तक अल्लाह चाहेगा उनके उस गुनाह को माफ करके, बिल आखिर फिर उनको वहां से निकाल के नहरे हयात में डाला जाएगा और वहां से फिर जन्नत में जाएंगे। तब आप और मैं ट्रैक खुद चूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे किसी को शुगर की बीमारी हो जाती है ना, तो डॉक्टर कहते हैं कि परहेज कर लो तो तुम्हें इंसुलिन नहीं खानी पड़ेगी। वो परहेज नहीं करता, इंसुलिन खाई फिर आहिस्ता से इंजेक्शन पे आ जाता। आपने देखा लोग एक हाथ से मिठाई खाते हैं तो दूसरे हाथ से इंजेक्शन लगाते हैं, फिर एक वक्त आता है इंजेक्शन भी काम नहीं करते, फिर जरा सा कुछ आला बना तो उसके बाद चलो पूरी उंगली में इंफेक्शन हो गया। मैं ऐसे एक ब्रदर को जानती हूँ, अल्लाह ताला उनके दर्जे भी बुलंद करे और उनको इसमें बेहतरीन रखे, कि शुगर के मरीज थे और पाँव नाखून में एक हल्का सा जैसे शायद नाखून काटते हुए कट लगा था, होते होते वो नाखून गला पाँव का, होते होते फिर वहाँ दूसरी उंगलियों में गया, फिर उसमें स्मेल आने लग गई, फिर एक वक्त आया कि डॉक्टर ने सिर्फ वो अपनी उंगलियों को काटा लेकिन जख्म भरते हुए, फिर एक वक्त आया कि उनकी पाँव कटा, एक करके दूसरी दोनों टांगे उनकी आधी कट चुकी। वो उस इंसान जो सारी जिंदगी चला फिरा हो, भागा दौड़ा हो, हम अपनी आंखों से उनको देखते किस तरह वो इस तरह, अल्लाह को पता उनके क्या मामले हैं, लेकिन अपने गुनाहों से अमले बहुत कर लिए, कितने करने और? कभी आपने सोचा ये बात, आखिर कब तक मैं गुनाह कब छोड़ूंगी? एक दिन तो मौत का नशा छुड़ा लेगा हमसे। एक वक्त आता है जवानी खत्म होती है, वो मंगी खत्म हो जाती है। अब आज अगर 50-60 साल में इस बार ठंडे हो गए, वो कहता है कि मैंने म्यूजिक छोड़ दिया, तो क्या कमाल की आप, तो आपको समझ ही नहीं आती, आप गाने नहीं आप सुनते तो क्या फायदा आपको, तो गाने की अब समझ ही नहीं आती। असल बात क्या है कि इंसान उस वक्त उस काम को करे जिस वक्त करना फायदा है। तो गोया कि आपको यहाँ से नबियों की तबलीग का एक सूरत अंदाज है कि लोगों के जमीर को जगाया है, उनकी अना को नहीं भड़काया, तुम गुनाहगार तुम जहन्नमी, और किसी की अकल को चैलेंज करने के बजाय उसके शऊर को चैलेंज कर देना चाहिए, उसको जगा लेंगे तो फायदा होगा। फिर इसी तरह आप देखिए कि ये बात करने के बाद आगे क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ करवाने के लिए तुम्हारे साथ ये सारे मामले कर रहा हूँ, और साथ ही कह दिया वह जले मुसम्मा, और तुम्हें एक वक्त मुकर्रर तक मोहलत देगा। यानी नबियों ने फितरत और कायनात की तरफ उनकी तवज्जो दिला दी कि इतनी नेमतें देने वाले हो, तो गोया कि मेरे की बात बड़ी वाजे है कि जब भी लोगों को दीन की दावत दें तो उनके शोर को करें। हम पता क्या करते हैं अमूमन, अगले की अना को बेदार कर देते हैं, और अना जो होता है ना ये सोया हुआ शेर है, सोया ही रहे तो अच्छा है, जिस दिन उठ गया ना ये आपको ही खा जाएगा। तो लिहाजा नबियों ने बड़े प्यारे तरीके से दावत दी, अब जरा कौम का भोंडा जवाब सुनिए। ये डायलॉग है, पूरा सबक आप देखेंगे कॉन्वर्सेशन है नबी के मुकाबले में कौम, ऐसे कह लीजिए जैसे आज के दीनदार के मुकाबले में आम दुनियादार। कालू कहने लगे, कौन? कौम ने कहा, इनन तुम इल्ला बशरुम मिसलुना, आप तो कुछ भी नहीं मगर हमारी ही तरह के एक इंसान है। ये भी एक अजीब मुसीबत रही, लोग दीनदारों के साथ कोई ना कोई खास चीज देखना चाहते हैं, ये पानी पे चलें, ये हवाओं पे उड़ें, और इनके चलने से नीचे आग निकले। कहते थे तुम हमारे ही जैसे हो, हमने तो सुना था तुम बड़े नेक हो, जब तुम्हारे करीब आके देखा तुम खाते भी हो, तुम पीते भी हो, तुम सोते भी हो, तुम्हें कपड़े भी बदलने की जरूरत पड़ती है, क्या हो गया? कोई फरिश्ता होता, कोई वली, कोई ऐसा होता जिसके मुंह से धुआं निकलता तो मानते। तो याद रखिए कि दीन वाले नबी ही क्यों ना हो, वो इंसान होते हैं। जब हम उनकी शख्सियत को इस तरह से पेश कर देते हैं कि वो एक माफोकल फितरत बन जाए तो बात नहीं। किसी की एक बड़ी प्यारी बात कहीं पड़ी, इंशाल्लाह एक दर्स भी उस पर तैयार कर रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि लोग आज के दौर में वलियों को ढूंढते हैं। तुम्हें पता है आज के दौर का वली कौन है? अभी उनके क्वेश्चन थे जो पूछे उन्होंने, तो ज़ाहिर है लोगों ने अपनी अपनी बातें बताई होंगी कि वली कौन है, करामत क्या, उसकी क्या। کہنے لگے تمہیں پتہ ہے آج کے دور کا ولی اور اس کی کرامت کیا ہے؟ جو بندہ سنت پہ عمل کر رہا ہے. آج کے دور کی ولایت کیا ہے کہ کسی بندے کو دیکھو کہ اس کی زندگی میں سنت پہ عمل کتنا ہے. پھر انہوں نے ایک واقعہ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ایک شخص ایک بہت بڑے نیک بزرگ ہیں, نام معروف ہے, اگر میں بھی لوں گی لیکن مجھے لینا نہیں اس لیے نہیں لے رہی, تو ان کے پاس گئے, بڑی شہرت سنی, کہا کہ میں ذرا دیکھوں کہ ان کی کرامت کیا ہے, ان کے اندر کیا خوبی ہے کہ ان کا نام بڑا ہے. کافی عرصہ ان کے ساتھ رہے, مایوس ہو گئے. پھر آخر ایک دن بول پڑے, کہنے لگے میں تو اس نیت سے آپ کے پاس آیا تھا کہ ذرا میں آپ کی کرامتیں دیکھوں, آپ کیا کرنی کرنے والے ہیں, تو مجھے تو آپ میری جیسے انسان لگے ہیں, آپ کے اندر جیسے کوئی بات نہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم اتنا عرصہ میرے ساتھ رہے ہو, کیا تم نے مجھے سنت کے خلاف کوئی کام کرتے دیکھا؟ کوئی غیر اسلامی چیز تم نے میرے اندر دیکھی ہے؟ اس نے کہا نہیں, یہ تو میں نے نہیں دیکھا. کہتے پھر آج کے دور کی ولایت چاہیے. تو بہرحال ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے والا بنا دے. پہلا اعتراض کیا تھا کہ تم ہم جیسے انسان ہو, اب دوسرا اعتراض بلکہ الزام, تریدون ان تصدون عما کان یعبد آباؤنا, آپ چاہتے ہیں کہ روک دیں ہمیں ان کی پرستش یعنی پوجا پاٹھ سے جن کو پوجتے تھے ہمارے باپ دادا. چلو ٹھیک ہے, فاتونا بسلطان مبین, تو لائیے آپ ہمارے سامنے کوئی کھلا معجزہ. جواب کیسا لگا؟ الزام کیا لگا؟ کہ آپ ہمیں ہمارے باپ دادا کے طور طریقوں سے ہٹانا چاہتے ہیں. یہ الزام بھی ہر نبی پہ لگا. کیوں؟ آپ دیکھیے کہ کوئی بھی سوسائٹی ہوتی ہے نا, اس کے اندر دو دین ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, یعنی دو سٹرنگز ہیں دین کے نام پہ. ایک ہے نبیوں کا لایا ہوا دین, وحی کا دین جو ہمیں سچائی کی صورت میں دکھ رہا ہوتا ہے. ایک دوسرا دین ہوتا ہے, وہ کون سا ہے؟ باپ دادا کی رسم و رواج کا دین, طور طریقے. دیکھیں دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ, شادی کیسے کرو, بچہ پیدا ہو جائے تو کیا کرو, کوئی مر جائے تو اس سے کیا کرو. نبیوں کا بتایا ہوا طریقہ بہت سمپل ٹو دی پوائنٹ ہوتا ہے. کوئی مر جائے, تعزیت کرو, اس کا کفن دفن کرو, جنازہ پڑھو, اس کو دفن کرو, پھر تین دن تک اس گھر والوں کو کچھ کھلاؤ پلاؤ, صبر کی بات کرو, اور تیسرے دن ختم, دیٹس اٹ. تم بھی اپنے کاموں میں لگو, اس کو بھی لگنے دو. یہ مثال دے رہی ہوں آپ کو نبیوں کے طریقے کی. اس کے برعکس جب وقت, معاشرے اور رسم و رواج کا دین کیا ہوتا ہے, کوئی مر جائے تو غم بڑھ جائے, کیا ادھر کھانا دینا پڑے گا, اور کب؟ جب کہ بیٹی کے سسرال میں کوئی مر گیا, پھر سارے لوگوں کو دور دور سے ٹکٹ خرچ کر کے آنا پڑے گا, کیونکہ ہم نہ آئے تو کل یہ نہیں جائیں گے. میں نے اپنے کانوں سے کسی کی باتیں سنی کہ کوئی فوت ہوا, تو گھر میں کنورسیشن تھی کہ جائیں کہ نہ جائیں, تو انہیں کہا نہیں جانا پڑے گا, جب ہمارے ابا کا انتقال ہوا تھا تو وہ بھی دوسرے شہر سے آئے تھے. پھر لوگ مسجدوں میں جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد یہ باتیں کر رہے ہوتے, بس ادھر تک ہی ٹھیک ہے, ہم نہیں جائیں گے قبرستان, کیونکہ یہ بھی ابا کی دفعہ قبرستان نہیں گئے تھے. کین یو بلیو؟ پھر کھانے کھلتے ہیں, پھر پرسے کے کھانے, پھر تیجے کا کھانا, پھر داسے کا کھانا, پھر چالیسویں کا کھانا, اور وہ ختم ہی نہیں ہوتا جب تک ایک دو چار سال کی برسیاں نہ منا لے. اب یہ دو دین ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, لوگوں کو کون سا اچھا لگے گا؟ جو فیملیئر ہے. دیکھیے آپ اور میں کیوں سبزی گوشت کھاتے ہیں, کدو کھاتے ہیں, سبزی, آلو گوشت, سبزی, دال, کیونکہ بچپن سے ہم نے اپنے گھروں میں یہ پکتے دیکھا. ایسے ہی ہے نا, پاکستانی کھانا کھا کر یا دے کر ہمیں خوشی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم اس سے یوز ٹو ہیں. اس کے بالمقابل آپ کہہ سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کسی چائنیز کو یا اٹیلین کو ہم دال چاول پیش کریں تو وہ ناک منہ چڑھائے, کیونکہ اس کے لیے نہیں, اور سیم چیز ہماری ان کے ساتھ ہوگی. بس ایک کھانے کی مثال سے سمجھ جائیں کہ آج میرا اور آپ کا جو ارد گرد کا معاشرہ ہے نا, اس میں اب وہ ہدن کا دین تو دب گیا اور ہوا کا دین اوپر ہے. اور یہ اس دین کو اتنا پروٹوکول پتہ کیوں ملتا ہے؟ ہوا, خواہش, ڈیزائر, کیونکہ اس میں مزے بڑے ہیں. چلو مرنے والے گھر جا رہے ہیں, کھانا کھا کے آئیں گے. میں نے ایک ایسا ایکسپیرینس بھی کیا کہ گھر والوں نے کہا ہوا تھا کہ چلیں کچھ نہ کچھ دین کی بات کر لیں گے اس موقع پہ, جب جنازہ اٹھے گا تو تھوڑا سا درس کی بات کر لیں گے. جنازہ اٹھانے سے پہلے اعلان کر دیا گیا کہ کھانا بھی نیچے تیار ہے. بلیو می, 10-12 منٹ سے زیادہ وہ سسٹر نہیں بات کر سکی, اور عورتیں کہہ رہی تھی کھانا کھلا ہوا ہے, مرد دیکھ رہے ہیں, وہ نیچے کھانا یاد آ رہا تھا لیکن یہ روح کا کھانا نہیں نظر آتا. کھانا روز کھاتے ہیں پھر بھوکے کے بھوکے, اور دین کا کھانا تو کبھی ملے تو اس پہ بھی لگتا ہے کہ کتنا وقت رہ گیا, تھوڑا نہیں ہونا چاہیے تھا, کم نہیں ہونا چاہیے. कभी आप सोच के देखें, मैं तो अपने ऊपर ही लेती हूँ, हमारा हाल क्या है? हर दिन ईद और हर रात शिवरात्रि है। जो खाते हैं हम, कभी ऐसा खाया था रोज? जो हम पहनते हैं, कभी ऐसा पहनना था रोज? मैं कहती हूँ जो हम बिगड़ गए, नाम नहीं लेने को दिल चाहता, जो लफ्ज इसमें हम अपनी जुबान में बोलते हैं, खा खा के फिट गए हम लोग। हमारी आंखों से दुनिया जाती नहीं है, इसकी तलब कभी कम नहीं होगी। नबियों की दावत थोड़ी सी संजीदा, लेकिन वो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नल कुलूब। जाओ सारा दिन मौज करो, मस्ती करो, ये खाओ वो पियो, वो देखो, फिर देखना रात को बिस्तर पे तुम्हें नींद कैसी आती है। हो सकता है ट्रैंकलाइजर लेके सोना पड़े, और अगर खुदा ना खास्ता लेटते ही जरा सांस उखड़ने लगे तो करोगे क्या? इसके बरक्स आपकी जिंदगी दूसरों को लगती है बड़ी उदास जिंदगी है, ये क्या मजे की बात है? कोई फन नहीं, लेकिन आप उस दिल की दुनिया को देखें, किसी चीज की कमी नहीं है। अगर आप सुन्नत के मुताबिक कामों को करना जाने, हमें फिक्र लग जाती है ना, ये कैसे हो सकता है? दीन और दुनिया दोनों साथ कैसे चलेंगे? खुशी और गम दोनों साथ कैसे चलेंगे? तो अल्लाह ताला कहता है कि ऐसे लोगों को नबियों की इस बात पे बड़ी हैरत हुई कि आप हमें अपने बाप दादा के तौर तरीकों से बदलते हैं। और याद रखिए, जब बंदा इस्लाम की तरफ आता है, ला इलाहा कहना बहुत आसान है। अल्लामा इकबाल ने भी कहा था ना कि खिरत ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, जब तक दिलो निगाह मुसलमान है। इस निगाह को भी कलमा पढ़ाना पड़ेगा, गंदी चीजों से बचाना है, इन कानों को, इस जुबान को गंदे बोलों से बचाना पड़ेगा, फिर आप देखेंगे कि सच्चा इस्लाम आएगा।